श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक क्रमांक 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् माताजी अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थ फालतू चीजें उपशमम बहिष्कार निवारण साक्षात् प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि अधोक्षजे ब्रह्म को लोकस्य सामान्य लोगों का अजानतः न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संग्रह किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिताम वैदिक साहित्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्तियोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश भी सम्मिलित रहते हैं, अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों को, अवांछित कष्टों को देखा, बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम का पुनः लाभ केवल श्रवण तथा कीर्तन पर अवलंबित नहीं होता, अपितु केवल पूर्ण रूप से भगवान की अहैतुकी कृपा पर निर्भर करता है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्णतया प्रसन्न होते हैं तो वे उसे दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक अनुरक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान तो परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्त पर आश्रित होता है। हरे कृष्ण। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्पद संहिताम्। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्तियोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य की संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। प्रसंग ऐसा है, व्यासदेव ने लोक कल्याण हेतु सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की। सब ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो अपने हृदय में असंतुष्टि अनुभव किए, और तब इस असंतुष्टि का कारण जानने और इस असंतुष्टि से बाहर निकलने वो बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करने लगे, और उनकी प्रामाणिक और तीव्र प्रार्थना सुनकर नारद मुनि वहां अवतरित हुए। नारद इस शब्द का मतलब ही यही है, जो नारायण को दे सकते हैं। नारायण को दे सकते हैं कैसे? भक्ति के द्वारा। जिनको भी नारद मिलते हैं हम देखते हैं, अगर वो प्रामाणिक रूप से नारद मुनि का आश्रय ले और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करे तो जल्द से जल्द भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, कितने सारे मृगारी। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं, और उन्हें समझाते हैं तुरंत उस असंतुष्टि का कारण, जिस प्रकार एक दक्ष वैद्य एक बीमार व्यक्ति कोई जाता है, रोगी जाता है तो सिर्फ उसके नाड़ी पकड़ता है, आंख बंद करके तुरंत बता देता है कि ये तुम्हारी समस्या है और इसका हल ये दवाई। जितना वो दक्ष वैद्य होता है उतना जल्दी बीमारी का कारण बताता है और उसका सुझाव भी दे देता है और उस व्यक्ति को, मरीज को बीमारी से दूर करता है। इसी तरह से एक सद्गुरु के अपने जीवन में जब आते हैं तो वो तुरंत हमारी बीमारी को पहचान कर हमारे दुख का कारण, हमारी असंतुष्टि का कारण वो तुरंत समझ जाते हैं। और असंतुष्टि का कारण यही है, एक ही है कि जैसे मछली पानी से बाहर है, तड़प रही है, तो कारण समझ सरल है, अपने मूल स्वरूप में नहीं है वो, एक इट्स इन ए फॉरेन कंडीशन। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहां कितना भी अच्छा हो फिर भी वापस घर जाना है भाई, ठीक है, एक 10 दिन के लिए अच्छा है, 15 दिन के लिए अच्छा है, पर वहां का खाना अलग, वहां का वेशभूषा अलग, वहां का भाषा अलग, वहां का जो रहन सहन अलग, तो थोड़े समय के बाद घर की याद आने लगती, कितना भी अच्छा वातावरण हो फिर भी घर जाना। इसी तरह से जीव इस बद्ध संसार में आया हुआ है, उसे नहीं मालूम, वो तड़प रहा है पर उसे मालूम नहीं है, तड़प तड़प के उसको लगता है तड़पना ही है, मतलब ये स्वभाव है मेरा। पर जब एक सदगुरु के जीवन में आते हो बोलते हैं ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तू तड़प इसलिए रहा है क्योंकि अपने मूल स्वरूप में नहीं है, मछली को वापस पानी में डाल दो, खुश, कुछ नहीं चाहिए उसको। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, सेवा करने की जो सेवा प्रवृत्ति है वो है, पर जब वो भूल कर यहां आता है संसार में, अनर्थ अनर्थ अर्थ यानी मूल्यवान चीज जो बहुत मूल्यवान है, जो सही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और अनर्थ मतलब उसके विरुद्ध जो फालतू है, यहां बताया गया फालतू चीज है, अज्ञान पूर्वक फालतू चीजों को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। शायद मैं एक पहली बार भी बताया था, मैं जब छोटा था, बच्चे थे हम लोग, खेलते थे बहुत सारे, गोली खेलते थे, फिर वो सिगरेट पैकेट का ऊपर का होता है उसको एक डाल के फिर पत्थर से उसको मारना निकालना, और हर एक सिगरेट पैकेट के ऊपर जो नंबर होता है, चार मीनार उस समय, उसको हमने मूल्य, अपना मूल्य दिया था, उसको हमने मूल्य दिया था, ये 10 10 पॉइंट, पनामा 50 पॉइंट, और मैं ऐसा कोई एक टोपी वाला एक था, हो गया भूल गया मैं, ब्रिस्टल नहीं ऐसा एक टोपी वाला मैंड्रिक जैसा था, हाँ विल्स समझ लो, विल्स 500 का पॉइंट ऐसा कुछ, तो हम लोगों ने पॉइंट दिया था उसको, तो हम लोग जाके बच्चे सिगरेट के दुकान के सामने खड़े रहते थे ऐसा हमेशा, और वो दुकान वाला दे देता था दो दो छुट्टा, कभी छुट्टा देता था, कभी कभी पैकेट दे देता था, पैकेट देता था वो बुरा लगता था, पूरा पैकेट ही लेके चला गया, पर छुट्टा छुट्टा देता था वो, और पैकेट फेंकता था तो हम लोग कैश पकड़ देते, 1000 मिल गया, क्योंकि सिगरेट में दो साइड होता है ना, 50 500 500, तो किसी को फेंका तो 20, मतलब अगर कोई 500 रुपया फेंके तो कैसा पकड़ते हुआ, ऐसा हमको लगता था। और हम लोग सोचते थे, एक्चुअली मैं हृदय में सोचता था कितना मूर्ख आदमी है, 1000 पॉइंट फेंक रहा है, हर रोज कितना पॉइंट फेंकता है। तो हम लोग उसमें रबर बैंड डाल के, इतना उसमें खराब हो गया था, कभी कभी हम लोग पत्थर मार मार के फट जाता था, फिर भी उसको अच्छी तरह से ऐसा ऐसा स्त्री करके रबर बैंड मेरी माँ बोल क्या भर भर के रखा है कचरा, निकाल इसको, फेंक इसको। तुझे नहीं मालूम हजारों हजारों रुपए इधर, हजारों पॉइंट वाला, मैं इतना परिश्रम करके मैंने इकट्ठा किया ये, और दूसरों से जीत के लिया है मैंने, अपनी दक्षता से अपनी कला से मैंने इतना एकत्रित किया है, और ये मेरा धन अर्थ तू कहती है अनर्थ है। तो यही उदाहरण को थोड़ा सामने ले जाइए। इसी तरह से हम भी बच्चे बच्चे के समान अज्ञान में, प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, नते विदु स्व अर्थ गतिम, स्व अर्थ अर्थ यानी मूल्यवान चीज, मूल्यवान क्या है हमें मालूम ही नहीं, नते विदु हमें मालूम नहीं है, नते विदु स्व अर्थ अपने सचमुच में मूल्य क्या है, सबसे मूल्यवान चीज क्या है हमारे जीवन में जो जो सही में तपस्या करके पाने के योग्य है, वो हमें मालूम ही नहीं। नते विदु स्व अर्थ गतिम ही विष्णुम, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना, सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है, सब कुछ उन्हीं का है, उनके ही हम पुत्र हैं, सब कुछ हमारे लिए ये है, ये पूरा आध्यात्मिक संसार उन्होंने रचना की तुम लोगों के लिए, मां बाप परिश्रम से घर बनाते हैं सब कुछ करते तुम लोगों के लिए, अभी आराम से रहो तुम लोग, इसीलिए हमने इतना एकत्रित किया। तो भगवान के साथ, उस भगवान के साथ संबंध जोड़ना, ये स्वार्थ गतिम सही में मूल्यवान चीज है, और उसके लिए सचमुच में तपस्या होनी चाहिए। दुराशया ये, दुराशया गलत आशा के कारण, बही ही अर्थ मानिना बहिरंग शक्ति में जो क्षण भंगुर या नश्वर चीज है उसको हम लोग अर्थ मानिना, अंधा यथांधी ही उपनीयमान, अंधे हैं जो लोग नहीं जानते, वो आज नेता अगर बन जाए, अंधा यानी जिसको दिखता नहीं है क्या मूल्यवान है क्या नहीं है, आजकल के नेता कौन है, आजकल के नेता अब जनसाधारण में पूछो किसको श्रेष्ठ रूप में देखते हैं समाज में, या फिल्म एक्टर्स, वाह क्या कमाता है, क्या एक्टिंग करता है, हमेशा लड़कियों के साथ रहता है, क्या भोग करता है, सब जगह उसकी चित्र, मेरी चित्र वहां होती तो अगर काट के मेरा फोटो लगा दूंगा तो उसके चेहरे पे, हम कहीं ना कहीं हृदय में चाहते, इसलिए तो बार बार देखते हैं, काश मैं वहां होता उस स्तर पर, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, या स्पोर्ट्स स्टार्स, आजकल वर्ल्ड कप हो गया तो अरे क्या वो जो साबुन यूज करेगा हम ही वही करेंगे, वो जो टी शर्ट पहनेगा वही हम पहने, करोड़ों करोड़ों रुपया आज उसके जीवन में क्या चल रहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, उसका आचरण कैसा है, तत्तदेवे तरो जनः, हम भी वही करेंगे, सयत प्रमाणं कुरुते, ये साबुन अच्छा है, ये टी शर्ट अच्छा है, ये अच्छा है, लोकस्तद अनुवर्तते, हम भी वही करेंगे। या कोई राजनीतिक व्यक्ति, हर जगह फोटो उनका, एक से बढ़कर एक गुंडे दिखते हैं एक्चुअली। अब पहले पहले तो ये फोटो वोटो नहीं हुआ करता था, वोट डालो सिर्फ चित्र, बस एक हाथ दिखाते थे या एक कमल दिखाते थे, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अभी फोटो चीप हो गया, नहीं तो पेंटिंग बनाना पड़ता था, वो खड़ा रहेगा उसका पेंटिंग, तीन दिन खड़ा रहना पड़ेगा उसको पेंटिंग बनाने के लिए, तो चित्र नहीं बनाते थे, आज एक फोटो खींचा इसमें डाल दिया और निकाल दिया वो स्क्रीन, तो कितना बड़ा फ्लेक्स बोर्ड में 50-50, 60-60 फुट का डाल देते, खड़ा ऐसा पगड़ी बांध के खड़ा हो गया बस लोकोद्धारक। तो इस तरह से और और अरे रे रे कितना 50-60 लोगों का उसमें, कम से कम मेरा आ गया ना फोटो उधर, बस भर जाता पूरा मेला जैसा। और उनको लगता है जीवन की परम अवस्था हमने प्राप्त की। और इसीलिए दुर्भाग्यवश आप थोड़े क्षण के लिए सोचिए, किसी न किसी तरह से हम तो कृष्ण भावना में आ गए, और भगवान की कृपा हो हमारे थोड़ा बहुत प्रयास हो तो टिके रहेंगे शायद, पर जो आने वाली पीढ़ी है जिनको ये ज्ञान नहीं है, और जो 24 घंटा यही चीज देखता है ऐसा ही वातावरण में रहेगा, क्या करेगा वो, कभी सुना ही नहीं कुछ और चीज, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, तो जो सब लोग कर रहे हैं उनके पीछे जाएगा भीड़ भेड़िया जैसा। अब देखता हूं मैं अपने घर अपने रामशरणम बिल्डिंग के सामने, हम देखते हैं भीड़ जलाने वाले सब ऐसे जाते हुए, एक जाता है तो उसके पीछे सब जाते रहते, सब जाते रहते, हजार भेड़िया होते हैं पर एक ही आदमी होता है, बस है, ट्र, है किया तो बस एक आ गया, उसके पीछे सब आने वाले। एक कवि ने कन्नड़ में एक ये सुंदर एक कविता जैसा बनाई है गाना, कुरीगलु सार कुरीगलु, कुरी कुरी मतलब यही भेड़िया, अवरु इवरु नाउ नीव, मैं तुम ये सब सब के सब भेड़िए बन गए, ये हीरो हर हर करता तो हम लोग सब जाते उसके पीछे जा रहे, ये भी नहीं दे कहां जा रहे, अंधा यथांधी ही उपनीयमाना, वो अंधे हैं वो गड्ढे में गिर रहे हैं उसके पीछे हम भी गिर रहे हैं, तेपी शतंद्राम उरुदामनी बद्धा, बंधे हुए हैं वो, मुक्त होने का अनर्थ निकलने का सवाल ही नहीं, अनर्थ को ही अर्थ मानकर उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों को हम जैसे अज्ञानी लोग देखकर हम बोलते काश मैं भी ऐसा होता, पर जब महात्मा गण शुद्ध भक्त जो भगवत धाम से आते हैं या भगवान की अहेतुकी कृपा करके प्राप्त करके शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, वो ऐसे यशस्वी लोगों को, इस भौतिक संसार के यशस्वी नेताओं को देखते हैं, उनके हृदय में दया आता है, उनका हृदय फटता है, उनकी आंखों से आंसू आते हैं, बेचारे इन चीजों से कभी वो आकर्षित नहीं होते हो। क्या है ये, किस चीज के पीछे पड़े हुए लोग, जैसे मेरी मां देखती थी मुझे, क्या कर रहा है कचरा इकट्ठा कर रहा है तू रबर बैंड बांध के, जिस तरह से माता पिता बच्चों को देखती है कुछ चीजों को इकट्ठा करते हुए, इस तरह से हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई, इट इज ए कैंसर, समझ लीजिए आपको एक कैंसर होके इतना बड़ा पैर के ऊपर एक गांठ आ गया, और डॉक्टर बोलता है ये गांठ को हटाओ ये तुम्हें मार डालेगा, नहीं नहीं मेरे शरीर का एक अंश है, कितना अच्छा गांठ, कितना सुंदर दिखता है, किसी के पास नहीं केवल मेरे पास है, एक्स्ट्रा मेरे पास है, तुम हंसेंगे कि नहीं, बोले ऐसे ही है, अनर्थ उपशमम साक्षात नते विदु स्वार्थ गतिम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, उन चीजों को एकत्रित करके हम लोग सोच रहे जो हमें बांध रहा है, मतलब बांध बांध के हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डाल रहा है, उसको हम पकड़ के रखें, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सब सब सबसे मूल्यवान धन है, ये कभी पता नहीं लगेगा हमको जब तक ऐसे महान भक्त जो है या शक्त्यावेश अवतार कृपा करके हमें सात्वत संहिताम ऐसे शास्त्र नहीं देते, वैदिक वांग्मय और खास करके उसमें भी जो श्रेष्ठ, उनमें भी जो श्रेष्ठ है जिसमें धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वास्तव वस्तु भगवान और भगवान के भक्त, यही वास्तव, वस्तु मतलब भगवान और वास्तव मतलब उससे जुड़े हुए भक्त, बस भक्ति और भगवान
ये दो ही मूल्यवान चीज है व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, भगवान और भक्ति। इसके अलावा कोई भी चीज हमारे लिए क्या मूल्यवान चीज है? वास्तव वस्तु अत्र शिवदम, शिवदम मतलब सचमुच में मंगलमय। हमको लगता है लॉटरी लग गया, मंगल हो गया, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ऐसा कीजिए ताकि मेरे को लॉटरी लग जाए, ताकि मैं फंसते रहूं और ज्यादा इसमें। शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से निकाल के फेंकने वाला शास्त्र। श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, इसे बढ़कर क्या हो सकता है? तो व्यासदेव बद्रीनाथ के बर्फीली पहाड़ों में बैठकर, पूरे बर्फ है, आज भी जाएंगे वहां रह नहीं सकता आदमी, पर हम व्यासदेव को देखते एक लंगोट पहने हुए, बस हम लोग 10 स्वेटर पहन के जाते फिर भी ठंडी से कांपते रहते। उस ठंडी में बैठकर उन्होंने ऐसा एक हीट, गर्मी पैदा की सिद्धांत का, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत की ऐसा गर्मी पैदा की और ऐसा ज्वाला पैदा किया वहां, जो जिसके के स्पर्श में भी आए हमारे हृदय का जो सुप्त अवस्था का कृष्ण प्रेम का जो चिंगारी है उसको ज्वलित प्रज्वलित करके करोड़ों जन्मों के अनर्थ को जला के नाश कर सकता है। कहां वो बर्फीली जगह बैठ के कैसा अग्नि, शुद्ध भक्ति की अग्नि। यथाई धाम से समित धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। उस बर्फीली हिमालय में जगह बैठ के उन्होंने एक ऐसा अग्नि तैयार किया भागवतम जैसे, उसके संपर्क में जो भी कोई भी आया उसके सारे जो अनर्थ है, अनर्थ उपशमम। कैसे हो सकता है ये अनर्थ? केवल एक ही तरीके से जा सकता है, एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, अष्टांग नहीं है, योग नहीं है, केवल भक्ति। साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्ष यानी भगवान कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध भक्ति। पर लोकस्य अजानतः, लोग मालूम नहीं है, नहीं मालूम होने के कारण करोड़ों और चीजों के पीछे भाग रहे। इसीलिए उन्होंने चक्रे, उन्होंने एक निर्माण किया, क्या? सात्वत संहिताम, एक ऐसा वैदिक शास्त्र जो सात्वत है। सात्वत का यहां परिभाषा क्या देते हैं? परम सत्य के प्रसंग में, सत, सत्य यानी भगवान, ओम तत् सत, और सत से जुड़ा हुआ सात्वत, सात्वत संहिताम। मैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हम्पी गया था, जो किष्किंधा क्षेत्र है और पंपा क्षेत्र नाम से भी प्रसिद्ध है, रामायण के काल से भी वो जगह बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ सब रामायण का कथा हम लोगों ने किया, तत्पश्चात हम लोग विजयनगर साम्राज्य का जो टूटा हुआ सब बाकी कुछ बचा हुआ है, रूइंस, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष, मतलब भूत बंगला जैसा सब गिर गया, सब कुछ गिर गया। वहां हम लोग गए थे, वो भी एक जगह है, तो मैं बोला इसके बारे में मेरे को उतना ज्यादा नहीं मालूम, तो मैंने एक बोला कुछ पुस्तक पुस्तक है क्या यहाँ उसके बारे में, कुछ पता करेंगे बोलेंगे। 350 रुपए का इतना मोटा पुस्तक ले आया एक व्यक्ति ने, अ फॉरगॉटन एम्पायर। तो मैं उसको पढ़ रहा था, 1336 से लेकर 1565 दो, क्या बोलते हैं, सेंचुरी, दो सेंचुरी में राज्य का हक्का बुक, हरिहर और बुक्का नाम के दो लोग, इसको विद्यारण्य
उन्होंने प्रेरणा दी, जैसा गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज को बोला भी, स्थापित करो एक साम्राज्य जहां इस तरह से उस समय सब प्रकार के आक्रमण हो रहा था, फॉरेन इन्वेडर्स सब प्रकार के आक्रमण कर रहे थे और वहां वैदिक संस्कृति नष्ट हो रहा था, लोगों को ज्ञान नहीं मिल रहा था, तो उस समय उन्होंने प्रेरणा दी एक ऐसा राज्य स्थापित करो जहां वैदिक संस्कृति बढ़े, शुद्ध भक्ति क्या है लोगों को समझ में आए, उस हेतु से वैदिक संस्कृति बढ़े जहां सब सबको एवरीवन कैन बी अकोमोडेटेड। वैदिक संस्कृति इतना सुंदर है, कोई भी व्यक्ति हो, एक ऐसा यूनिवर्सिटी कैंपस है जहां केजी स्कूल से लेकर पीएचडी तक सबको सम्मान देते हैं, सबको एक अपना अपना मौका मिलता है अपने अपने स्तर पर पढ़ाई करने के लिए, प्रगति करने के लिए। दूसरे कोई भी जो धर्म के नाम से जाते हैं इतना विशाल और इतना अकोमोडेटिंग नहीं है। मेरा पथ माई वे और द हाईवे, मेरा पथ सही है, सब लोग इधर ही करना पड़ेगा, नहीं तो मरो, नहीं तो तुम लोग गए फिनिश, यूर यूजलेस, बहिष्कार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। पर वैदिक संस्कृति ऐसी है, तमोगुणी पुराण, सत्वगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, सब लोगों के लिए केजी स्कूल से लेकर, और सबको हम सम्मान देते हैं। करोड़ों 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 सृष्टि की शुरुआत से हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के नीचे सब प्रकार के लोग अपना अपना पालन करते हुए प्रगति कर रहे हैं। अरे को ठीक है, भगवान इसीलिए गीता में भी कहते हैं किसी को कोई श्रद्धा है कहीं उसको बिगाड़ो मत, उसको बढ़ाने का प्रयास करो, पर उस श्रद्धा को नष्ट मत करो, वो श्रद्धा मैं ही दे रहा हूं। तो इस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी और शुरू किया। एनीवे वो अलग बात है। तो मैं उस पुस्तक को लिया, पुस्तक लेके पढ़ना शुरू किया, पूरा मेरा दिमाग जो है खिचड़ी बन गया। कितने समय की बात है, 700 साल, 700 साल के बीच घटा हुआ एक कुछ सालों का, 100 सालों का जो राज्य का, 100 या 250 से 200 सालों का राज्य में सबसे पहले इतना नाश किया उन लोगों ने, कुछ ज्ञान है ही नहीं लोगों को क्या हुआ था उस समय, उसके पहले क्या हुआ था, क्योंकि सब प्रकार के ग्रंथों को जला दिया था, सब लोगों को मार डाला था, सब तितर बितर हो गए थे। उसके बाद 150 साल तक तो मरुभूमि जैसा पड़ा हुआ था, उसके बाद लोग आने लगे, धीरे 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 फिर से शुरू होने लगा। अब उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस समय यहां जो ग्रंथ, यहां जो लोग भी लिखे थे वो लोग मर गए, वो ग्रंथ भी खत्म हो गए, तो फिर पाश्चात्य देश के लोग उस समय आते थे। हाँ, पोर्चुगीज एक व्यक्ति आया था, इतिहास लिखने वाला हिस्टोरियन, उसने लिखा है ये राज्य कैसे थे, कैसा मार्केट होता था, क्या क्या बिकता था ये मार्केट में, किस तरह से समृद्धि थी, किस तरह से लोग बड़े सुखी थे, आनंदित थे, ऐश्वर्य क्या था। दूसरा एक फ्रेंच वाला लिखा है, दूसरा एक मुस्लिम वाला लिखा है, मोहम्मदन, ऐसे 4-5 लोगों का मत उसने इकट्ठा किया है, पर हर एक का मत अलग अलग है, क्योंकि उस समय पोर्चुगीज वाले लोग भी राज्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उनका उद्देश्य अलग था, उन्होंने वर्णन कई अलग तरीके से किया है। जो मोहम्मदन ने उसने अच्छा किया, बोले अच्छा राजा, ये राजाओं ने अच्छा किया, सब खत्म करके नया राज्य साम्राज्य शुरू किया। अलग अलग लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने समझ से लिखा है, और ये कहता है, ये लिखा है कि ऐसा नहीं हुआ, ये कहता है ऐसा हुआ। तो ये दोनों को, ये चारों को लेके हमको लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। मैं बोला इसका मत सही है कि इसका मत सही है कि उसका सही है कि ये सबका खिचड़ी बना हुआ, आधा आधा सबसे लिया हुआ, ये जो खिचड़ी पकाया इसलिए इसको स्वीकार करूं। पुस्तक रख दिया, मैं बोला प्रभुपाद के ग्रंथ के पढ़ेंगे कि शास्त्र कैसा पढ़ना चाहिए और किन चीजों पे, तब मुझे ये विचार सोचने लगा मैं कि जो पुस्तक है, कोई भी ग्रंथ, इसमें कोई भी उपन्यास उपलब्ध, जितने सारे पुस्तक हैं पूरे लाइब्रेरी में,
और शास्त्रों में अंतर क्या है? और शास्त्र मतलब क्या? परंपरा से आए हुए शास्त्र, तब मुझे समझ में आया। अब बोलो, अब देखो, करोड़ों करोड़ों साल पहले हुई घटना रामायण किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, महान आचार्यों ने आज भी हमारे लिए सुरक्षित बना के रखा उसको, क्या तपस्या किया होगा उन्होंने। एक छोटा संदेश भी उसमें से इधर उधर नहीं है, उसका सार बना के रखा है उन्होंने, क्या तपस्या किया है वो हिफाजत से रखना और आने वाले पीढ़ियों के लिए देना, सबसे बड़ी तपस्या उनकी वो थी। हालांकि अलग अलग प्रकार से आक्रमण हो रहा था इस संस्कृति पर, कितना आक्रमण हुआ है, हजार साल तक फॉरेन रूल, और वो भी ऐसे नहीं, मतलब हजारों हजारों लोगों को एक साथ मार डालना, 12,000 वैष्णवों को मार डाला, जान से मार डाला इसमें अपना श्रीरंगम में। भगवान, मैं कभी कभी सोचता हूं सारे जीवी से बैठे रहते हैं मायापुर में, कभी सोच, ये बोलना भी ठीक नहीं है, पर कभी कभी मेरे को लगता है बाप रे, एक साथ सब लोग आए हैं और अगर कुछ हो गया तो द क्रीम ऑफ द पीपल, द होल वर्ल्ड इज सिटिंग इन वन प्लेस। आप सोचो ऐसा था श्रीरंगम उस समय, फिर से क्या स्थिति होगी दुनिया की, फिर से लोगों को उस स्तर पे लाने के लिए कितना समस्या होगा, उस तरह से कश्मीर में इत्यादि कहा जा, ऐसे हजारों हजारों श्रेष्ठ शुद्ध ब्राह्मणों को मार दिया गया था। ऐसी मतलब मेरे हमसे उनको द्वेष के लिए मैं नहीं कह रहा, वी हैव टू नो द फैक्ट्स, क्या तपस्या किया है महान आचार्यों ने इसे बना के रख के, हिफाजत के साथ रखकर हमें सौंपने में, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है कि इसको इधर उधर से काल्पनिक रूप से, नो स्पेकुलेशन। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था, इन लिखने वालों का, ग्रंथ लिखने वालों का, इन पुस्तक लिखने वालों का, ऐतिहासिक पुस्तक लिखने वालों का उद्देश्य क्या था? किसी का उद्देश्य होगा मेरे को हिस्ट्री जानना है बस, ये ऐसा, कुछ लोग एब्सोल्युटली न्यूट्रल, बस कुछ नहीं, जो देखा सो लिखा, आंखों देखा हाल, समृद्धि था समृद्धि था, ये राजा अच्छा था अच्छा, ये लोग चालू थे चालू थे, बस ठीक है एज इट इज। कुछ लोग को पैसा देके भेजा गया था इसको विकृत रूप से लिखो ताकि लोगों में विश्वास उड़ जाए, किस उद्देश्य से आए देखिए, वो इतिहास लिखने आए, उसमें से जो श्रेष्ठ चीज है उसको हटा देना, और जो गलती है उसको बड़ा बड़ा के बोलना ताकि लोगों में सम्मान चली जाए उस चीज के प्रति। और वही सुनते 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 अगर हम आएंगे, हमको लगेगा हाँ ये लोग भी अच्छे थे, ये लोग भी अच्छे ही थे, बुरे नहीं थे वो लोग, तो इस तरह से, और निष्कर्ष नहीं जानेंगे तो उद्देश्य अलग अलग था, या मेंटल स्पेकुलेशन, बस मैं समझना चाहता हूं मेरी बुद्धि से, 450 ग्राम की बुद्धि, तो क्या समझेगा दुनिया के उद्देश्य को, भगवान के उद्देश्य को क्या जानेंगे। ये सब पढ़ने के बाद भी ठीक है, सारा इतिहास पढ़ने के बाद भी क्या लाभ, क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, आपके कपाट में थोड़ा वजन बढ़ा बस पुस्तकों का, आपके दिमाग में फालतू इंफॉर्मेशन का अनर्थोपशमम हो रहा है क्या? एक कामुक राजा ने क्या किया, दूसरे कामुक ने इस कामुक को मार के उसने क्या किया, यही तो है पुनः पुनः चर्वित चरवनानाम, पूरा इतिहास वही है, इस राजा ने ऐसा किया, उस राजा ने उसको मारा, ऐसा किया। पर शास्त्र में हम देखते हैं अपनी विद्वत्ता का दिखाने के लिए, हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला उसको, उसके लिए लिखा, क्या इतिहास लिखा, क्या काव्य लिखा है, काव्य लिखा है, अरे रामायण जैसा कोई काव्य लिखा है उसको प्रशस्ति दो, ऐसे फालतू किस लोगों ने कुछ कामुक काव्य लिखा है उसका स्टडी करने के लिए एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, रामायण काव्य पढ़ने के लिए कहां है डिपार्टमेंट, महाभारत 1,00,000 श्लोकों का काव्य, इतना सिद्धांत, इतिहास और काव्य साथ साथ में, रोमांचक, उसमें सब कुछ है, रोमांस है, एडवेंचर है, सार है, सिद्धांत है, हृदय को शुद्धि करने की शक्ति है। उस चीज को हम लोगों ने फेंक दिया है, विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि वो माइथोलॉजी है। क्या परिस्थिति आ गई हमारी, आप सोचिए। आप ऐसे महान काव्य, ऐसे ग्रंथ, अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्ष लोकस्य अजानतो, लोकस्य अजानतो, लोगों को मालूम नहीं है। 1000 साल का जो दबाव के ऊपर, और वो भी उनका एक ही उद्देश्य था, दिखाओ। 1938 का एक लेटर है, बोले इन लोगों को पता नहीं है, भारत लोगों को अगर दबा के रखना है तो एक ही तरीका है, इनमें जो विश्वास है वैदिक ग्रंथों के प्रति, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे नियंत्रण में नहीं आएंगे। ये लोग आप देखिए, बहुत सारे साम्राज्य, बहुत सारे कल्चर, जहां भी 200 साल का, 300 साल का राज्य हुआ है फॉरेन रूलर्स, उन लोगों का कल्चर क्या था आज कुछ भी नहीं मालूम, मतलब जड़ से निकल गया है। केवल एक वैदिक संस्कृति है, 1000 साल के क्रूर रूप से नष्ट करने का प्रयास होने के बावजूद भी वो लोग चले गए, पर वैदिक संस्कृति का नाश नहीं हुआ। और फिर भी कोई तो एक उठ के फिर से स्थापित करता है, फिर से स्थापित किया। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, सत्य को कितना भी दबाओ वो निकलेगा ही। सत्यमेव जयते, परम सत्य को कितना, हे 2 और 2 साढ़े 5, समझा? 2 और 2 साढ़े 5, तलवार, ए 5.5 बोलो, 2 और 2 साढ़े 5, ठीक है, 2 और 2 साढ़े 5, समझे? हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। फिर बाद में वो मर गया, कोई उठ के बोलेगा मेरे को लगता है 2 और 2 4 है, 5.5 क्यों बोल रहे लो? मेरे को भी वही लगा, पर सब लोग तो तलवार दिखा रहा था ना, इसीलिए मैं हां बोल दिया बस। फिर कोई उठ के कहता है अरे 2 और 2 4 देखो ऐसा, हा समझ में। इस तरह से परम सत्य को कितने देर तक कौन कौन छिपा सकता है, कितना दबा के रखने का प्रयास कर सकते, नहीं। तो ये ग्रंथ आप देखेंगे, एंड ये ग्रंथ लिखने की स्फूर्ति कैसे मिलती है, एक दया, तीव्र दया, लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है, लोग इतना तड़प रहे हैं, इनको ये ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत होगी इनकी। तो अपना सब कुछ त्याग करके कहां जाके हिमालय में बैठ के उन्होंने ग्रंथ लिखा, चैतन्य। और प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरणा गुरु की आज्ञा और भगवान का कृपा। आप देखो चैतन्य चरितामृत भी, अपने आप को योग्य नहीं समझते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंडित नहीं समझते थे, पर गुरु की आज्ञा हुई, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा हुई, जाओ, रूप सनातन गोस्वामी की आज्ञा हुई, मदन मोहन जी का कृपा हुआ। मदन मोहन जी के जब गए आशीर्वाद लेने के लिए, वो खिसक के आया और हरिदास ने, वहां जो पुजारी थे उन्होंने लाके दिया, तुरंत समझ गए। गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने कैसा लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती की आज्ञा थी, जाओ और इसको स्थापित करो पूरे ठीक से, सिद्धांत को, राधा कृष्ण को साथ में पूजा करना बहुत जरूरी है, सिद्धांत को स्थापित करो। और गोविंद देव की कृपा हुई, गोविंद भाष्य। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली पाश्चात्य देश में, पाश्चात्य देश नहीं, इस देश में भी क्या ज्ञान था उनको, अगर ये समझते नहीं तो भगवान। कल मैं एक चर्चा कर रहा था एक व्यक्ति से, हाँ, एक प्रोफेसर के साथ, विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत पढ़ा हुआ उसने, पर उसने 3 प्रश्न पूछा, भगवान ने गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा सब ढक के आए? बोले नहीं, ढकना नहीं चाहिए, सब और भगवान को भी तो संग अपना क्या बोलते हैं प्रारब्ध, अरे भगवान को भी छूटा नहीं है प्रारब्ध, देखो हा? भगवान के वंश भी सबके सब मारे गए द्वारका में है, उनकी रानियां को बचा नहीं पाया अर्जुन भी प्रारब्ध से बचा नहीं है? मेरा हृदय एक जगह दया आ रहा था, एक जगह गुस्सा आ रहा था, एक जगह बोले क्या परिस्थिति, फिर उसको बैठ के समझाना पड़ा, समझाने के बाद उसने बोला एक्चुअली सही बोला आपने, मैं कृष्ण का भक्त हूं पर मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। मैं बोला कौन सा पुस्तक पढ़े हो, नहीं 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 मैं ओरिजिनल पढ़ रहा हूं बस, तात्पर्य पात्र किसी का नहीं पढ़ता, ओरिजिनल पढ़ रहा हूं। मैं बोला इसीलिए तो समस्या है तुम्हारा। बोले एवं परंपरा प्राप्त, अगर तुम शास्त्र परंपरागत नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, भारे भागवत भी पढ़ोगे, वो भागवत में ही बता रहा था। फिर मैंने बोला कात्यायनी पूजा की थी ना गोपियों ने, हाँ 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 लिखा है लिखा है, वो स्कंद में लिखा हुआ, हाँ क्या पूजा किए थे कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ना, हाँ हाँ लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला अघासुर जाने के बाद कृष्ण जो एक साल के लिए गोपियों गोप गोप बालक बने थे उसी समय सबका विवाह हुआ, इस तरह से भगवान ने इनकी इच्छा पूर्ण, हाँ मतलब थोड़ी बहुत नम्रता थी, एटलीस्ट स्वीकार किया उसने। तो कई लोगों ने दुर्भाग्यवश बड़े बड़े कवि अपने काव्य को महाभारत और रामायण इत्यादि के भागवत को लेकर उन्होंने अपनी बुद्धि की चीजें डाल दी उधर दुर्भाग्यवश। तो ये ग्रंथ पवित्र हैं, जब तक गुरु की कृपा भगवान का से प्रेरित भगवान की कृपा, यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, जब तक नहीं होगी तब तक ये समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे दूसरों को दे भी नहीं पाएंगे। हम सोच सकते हैं प्रभुपाद जी का योगदान क्या है। ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग इस भारत में जब प्रभुपाद जी देवताओं की पूजा और तथाकथित साधुओं की निंदा करते थे, और जब पाश्चात्य देश में जाते थे साइंटिस्ट लोगों की निंदा करते थे, क्यों क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि भारत में हम लोगों को लगता है सब एक ही है, सब साधु एक ही है, जो भी गेरुआ पहना हरि बोल चरण छुओ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है उसको, पर हृदय खोल के उनके मत को स्वीकार करना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के साधु है, अलग अलग मतलब साधु है क्या वो भी नहीं मालूम लोगों को, और दूसरा सब खिचड़ी, इसका भी करो उसका भी करो सब एक ही है, कोई अपना कुलदेवत का करो, कोई ग्राम देवा का करो, या कृष्ण का करो, या राम का करो, बजरंग बली का करो, इसका करो, या गणपति का करो, सब एक ही है। तो इसको जब से ठोक ठोक के नहीं बताएंगे वैदिक शास्त्रों का मर्म क्या है, सिद्धांत क्या है, तो यहां जब थे ब्लास्ट, ऑफकोर्स हम उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हम उस स्तर पर नहीं है, हमें समझकर बड़ी नम्रता से प्रस्तुत करना चाहिए, पर विद कन्विक्शन, पूरे श्रद्धा के साथ पर नम्रता से, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है, उतने शुद्ध नहीं है, हम विदुर जैसे नहीं है कि कठोर शब्द बोले और धृतराष्ट्र सुन ले, न हमारे हृदय में उतनी दया है, उतनी कृपा है, विद्वत्ता है, भक्ति है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ दोहरा रहे तोते जैसा, तो नम्रतापूर्वक दोहराना है हमको बस, मैंने जो सुना है ऐसे शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये गलत फहमी, फूल्स एंड रैस्कल्स, हम लोग बोलेंगे तो वो लोग फूल गेट आउट यहां से, पर विश्वास के साथ कहना है हमको, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना। तब मैं सोच रहा था क्या दिया है प्रभुपाद ने, जो कुछ समय में पूरी दिन भर एक संस्था बना रहे थे, एक लेबोरेटरी जहां जो लिखे है उसको अभ्यास तो होना चाहिए। मेलकोटे में मैं गया था, वहां एक व्यक्ति को दिया, बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं, 70 साल के 80 साल के, वो बोलते हैं मैं तंग आ गया पुस्तक लिखने, मैं बहुत पुस्तक लिख सकता हूं पर मैं मर जाऊंगा, पर एक ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इस पुस्तक का जो चीज है उसको डाल सके दुनिया में। प्रभुपाद जी ने दोनों किया, न केवल थियोरी दिया पर प्रैक्टिकली उसको उतारना कैसा है, ऐसे लोगों को प्रेरणा देकर, लोगों को ट्रेनिंग देकर एक संस्था को खड़ा भी किया, बोले ये पुस्तक है और इसको अभ्यास कैसे करना है, ये जगह में आओ, इधर देखो, पायलट प्रोजेक्ट है हमारे, प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, ये तो है बहुत अच्छा है महाराज, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है देखो, हमने खड़ा किया इधर, देखो कैसे लोग है, पूरे अनर्थ हिप्पी लोग आज कैसे भक्ति योगम अधोक्षजे, कुछ नहीं जानते थे लोग, को कृष्ण क्या है नहीं मालूम था, भगवान क्या है नहीं मालूम था, आज बाल के साथ साथ उनके सारे अनर्थ भी निकल गए, चमक रहे एकदम आज लोग, प्रैक्टिकली मैंने दिखाया महाप्रभु की कृपा क्या है, देखो इधर, एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में शुरू किया और 70 साल में रिटायर होकर क्लोजअप वाइंड अप करते लोग, बहुत हो गया अभी, अद्भुत, सोच नहीं सकते हम एक्चुअली। और एक ही उद्देश्य होता है, भगवान का गुणगान और लोगों के हृदय की शुद्धिकरण, भक्तों का यही उद्देश्य होता है लिखने का। प्रभुपाद भी जब ग्रंथ लिखे तो प्रभुपाद अपना ग्रंथ बड़े सुनते थे, प्रेम से सुनते थे, हाँ, तो एक भक्त ने पूछा आप अपना ग्रंथ इतने प्रेम से क्यों सुनते हो, ये जनरली जो लिखा है ना, बोलता है बहुत सारा लिखा हूं, कोई भी उपन्यास कुछ लिखता है, कथा वथा कहानी लिखता है कोई लेखक, उसको अपना सुना, बोले क्या सुना था यार, मैं ही लिखा हूं उसको, मत सुना, बट प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से सुनते थे, लोग बोलते आप कैसे सुनते हो, बोले मैं नहीं लिखा हूं, ये तो भगवान ने लिखा है, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते काष्टे रो, मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है, हाँ, अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में प्रचार करो संदेश को, और मैं देख रहा हूं ऐसी परिस्थिति, मुझे नहीं मालूम, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत का नाम एबे सार्थक करो, मेरे पास न भक्ति है न वेद है, ये नम्रता है, और ऐसे नम्र व्यक्ति ही भगवान के हाथ में एक निमित्त बनकर अद्भुत कार्य को कर सकता है, नहीं तो हमें क्या मालूम करोड़ साल पहले रामायण क्या हुआ था किधर, वही मैं सोच रहा था किष्किंधा में बगल में करोड़ साल पहले हुआ चीज हम लोग इतने प्रेम से सुना रहे, 100% सुना रहे, यहां शबरी थी, यहां हनुमान जी का जन्म हुआ था, पर कृष्णदेव राय कहां थे, यही कहीं हो गए शायद, उधर थे, ये बोलता है उधर थे, ये बोलता है इधर थे, ये अंतर है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली भगवान भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया चतत अपाश्रय, वो एक्चुअली देख सकते हैं अपने आंखों से, भगवान प्रकट करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कहते हैं गीता में ऐसे व्यक्ति को मैं अपने हृदय से अंधकार निकालकर उसको दर्शन कराता हूं, और वो जो लिखता है वो एक्चुअली मेरी वाणी है, परम सत्य की वाणी है। तो प्रभुपाद से पूछा गया तो आप क्यों लिखते हो, लेखक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अगर भगवान ने लिखा तो आप अपना नाम क्यों लिखते हो, प्रभुपाद ने कहा दैट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो कलम पेन का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी, निमित्त मात्र भव सव्य साची, मैं केवल निमित्त हूं, निमित्त का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी, संदेश महाप्रभु का है, संदेश कृष्ण का है, छाती ठोक कर कह सकता हूं इसमें एक भी गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसा सुना मैंने परंपरा में और जैसे मुझे प्रेरणा मिली है, एक भी उसमें से इधर उधर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष अंत में यह है कि हमें इन पुस्तकों का लाभ लेना है, इनको बार बार पढ़ना है जब तक हमारे हृदय में वो फिक्स ना हो जाए, क्योंकि बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बुद्धि का दो बीमारी है, एक संशय, हमेशा संशय, अच्छा है संशय करना, अच्छा है, बुद्धिमान व्यक्ति संशय करता है, एक बुद्धू आदमी सब स्वीकार करता है, ये दीवाल काला है काला है, क्यों तूने बोला ना इसीलिए काला, अरे मूर्ख सफेद दिखता है ना, हाँ, तो फिर अर्जुन भी भगवान से सुन रहा है पर पूछता है भगवान आपने कहा कि विवस्वते योगम, पर आप तो मेरे उम्र के हो, कैसा दिया आपने, हाँ मूर्ख नहीं था, पूछा उसने, बुद्धिमान था वो, पूछना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। तो संशय जो है सबसे बड़ा, और उस संशय को दूर करने के लिए बार 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 शास्त्र पढ़ना चाहिए। जितना हम बार बार पढ़ेंगे वो जो संशय है जो जड़ जड़ में अंदर गया हुआ है, बहुत जैसा एक पेड़ को काट देंगे तो जड़ जो है बहुत अंदर गया हुआ है, ये संशय हमारा बहुत अंदर गया हुआ है और उसको काटने के लिए बार बार सुनना चाहिए, अध्ययन कर बार बार सुनने। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया तदा रजस्तमो भाव काम दो बाय चेत एतैर अनाविद्धम एवं प्रसन्न मनव सो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। बार बार अगर भागवतम सुनेंगे, हर रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि। जब भौतिक संसार में आता है बद्ध जीव तो माया वो आत्मा को लेती है, एक शरीर को लेती है और गांठ बांधती है, ग्रंथि, तुम जन्म जन्म के साथी, ग्रंथि। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, संशय चला जाता है। और दूसरा दृढ़ता, दृढ़ता आने के लिए भक्ति में, मैं करूंगा भक्ति, निष्ठा, कन्विक्शन तब आएगा जब शास्त्र पढ़कर हमारा जो मतलब, जैसे आप देखते हैं ना कोई जो हजाम होता है ना, हजाम बाल काटने वाला, ओ इस पे तलवार को ऐसा धार करता है, क्यों, एक लगाया तो काट एकदम स्मूथ। इस तरह से नित्यम भागवत सेवया, हमारी बुद्धि इतना तीव्र हो जाती है, माया आया ना, माया अलग, मतलब जो जो माया बढ़ गया है ना इधर, स्मूथ शेव, कटता नहीं है, ध्यान से किया तो, ध्यान से सुनना चाहिए, इधर बातचीत करते करते काटा तो कटेगा, वो बाल के साथ साथ चमड़ी भी कटेगा, पर नहीं तो स्मूथ शेव। एडवर्टाइजमेंट में दिखाया ना ब्लेड का, एक मारा परफेक्ट। तो रेगुलर नित्यम भागवत सेवया, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और तीक्ष्ण बुद्धि में तुरंत समझ सकता है असतोमा सद्गमया, ये असत है ये सत है, इसके पीछे नहीं भागने का, तमसीमा ज्योतिर्, ये अंधकार, ये गलत है और ये ठीक है, मृत्युर्मा, ये मृत्यु के पथ पे ले जा रहा है, ये अमृतत्व के पथ पे ले जा रहा है, ये मैं करूंगा ये नहीं। सामने माया किसी भी रूप से आ जाए उसके अंदर देख सकता है आदमी, एक्सरे जैसा हो जाता है हमारा आंख, पूतना जैसे आएगा कोई गुरु, मैं तुझे दूध पिलाने आया, मैं दूध राक्षसी है तू निकल यहां से। तो जब तक वो दृष्टिकोण नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, वो पूतना को हम गले लगाएंगे, दूध पीने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो हम पता कर सकते नहीं, इज आर फॉल्स गुरुस, बोले ढोंगी है, कैसा कर सकता है तू, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है, उसके विरुद्ध है। तो ये प्रभुपाद जी का देन है। अब सोचिए, नहीं तो कहां होते हम लोग, किसको पूछते होते, क्या ब्रिटिश ऑथर क्या लिखा है उसने, भगवत गीता भाई सो एंड सो, क्या जानता उसको, भगवान को नहीं जानता, गीता क्या जानेगा उनका, ये कृपा है। तो जो व्यास देव 5000 साल पहले किए, उन्हीं की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने वही चीज किया है, अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम। और जो भी इनको पढ़ेगा नित्यम भागवत से, अनर्थ निकल जाएगी, भक्ति योग अधोक्षजे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, और अजानत जो अज्ञान है वो चला जाएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा कुछ विचार, वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे को माय अप्रिसिएशन फॉर प्रभुपाद कंट्रीब्यूशन, प्रभुपाद ने बोला थोड़े थोड़ा समय जाने दो, फिर लोगों को पता चलेगा कि ऐसे इन द एज ऑफ डार्कनेस व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड। ऐसे अंधकार के स्थिति में, जब घने अंधकार से गुजर रहा था हमारा पृथ्वी, उस समय इस संस्था ने किस तरह से योगदान देके प्रकाश फैलाया, जिस तरह क्या बोलते हैं, कृष्णे सुधाम अपगते धर्म ज्ञान कलौ नष्ट दृशामेश, जब अंधकार से गुजर रहा था ये हमारा पूरा विश्व, उस समय एक व्यक्ति ने सूर्य की किरण लाकर ये अंधकार को दूर किया। अज्ञान अति मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शला गया चक्षुर, और उस सूर्य को दिखाकर उस सूर्य के द्वारा अपने हृदय का जो सूर्य है उसको भी ज्ञान दीपेन भासवता, ज्ञान का दीप जलाकर हमारे हृदय का अंधकार और दुनिया के सारे अंधकार को दूर किया। बोले एक एक दिन पूरे विश्व सम्मान मानेगा इसको, इस तत्व को। पर हमें कम से कम विश्वास होना चाहिए अभी कि क्या सौभाग्य है हमारा और इसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो ये थोड़े कुछ विचार थे वो पुस्तक पढ़ने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पुस्तक पढ़ने के बाद, तब मैं समझ में आया बाप रे करोड़ों करोड़ों साल पहले सतयुग में हुई बातें कितने सुंदर से आचार्य दे रहे हैं, उसका मूल तात्पर्य भी दे रहे हैं, मतलब जो पल्स मर्म उनके उस कथाओं में छिपे हुए जो मर्म है, जो विद्वान से विद्वान लोगों को भी समझ में नहीं आ सकता है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना, सर्वश्रेष्ठ मुनियों को सबसे खतरनाक दिमाग वालों को भी मर्म कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसा एक्सरे आंख आचार्यों का है कि भगवान के हृदय के अंदर की बात को भी जानकर, साधवो हृदयो मह्यम, क्योंकि साधु भगवान के हृदय को जानते हैं, अंदर की मर्म की बात निकालकर उस कथा का ये उसका सार है। कितना बड़ा योगदान है, कितनी बड़ी तपस्या है, हमको बस एक ही चीज करना है, कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार करना है और हो सके तो चार पांच लोगों को बांटो, तब हमारा जीवन सफल हो। बांटने से पहले इकट्ठा करो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो बांटेगा क्या, समझो और जो समझ में आया उसको चार लोगों को बांटो। श्रील प्रभुपाद की जाय, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जाय।